Vedanta Stena.
हरे कृष्ण श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवधारी यशोदानंदन ब्रज नरंजन यशोदानंदन ब्रज नरंजन यशोदानंदन ब्रज नरंजन रावण प्यारी यमुना ती रावण प्यारी यमुना ती रावण प्यारी वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना ती रावण प्यारी यमुना ती रावण प्यारी यमुना ती रावण माधव कुंज बिहारी हरे राम हरे राम हो राम राम हरे 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरा भवति नैष्टिकी। आज हम श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का अध्याय नौवा, इनका शीर्षक है माता यशोदा द्वारा कृष्ण को बांधा जाना और श्लोक संख्या नंबर 12। कृपा करके मेरे पीछे उच्चारण करिएगा। त्यक्त्वा यस्तिं सुतं भीतं विज्ञाय अरभकवत्सल येष किल तं बद्धुं दाम्ना अतत् वीर्यकोविदा त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतम् त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतम् विज्ञाय अर्भकवत्सला येष किल तं बद्धुम् दाम्ना तद्वीर्यकोविदा त्यक्त्वा यस्तिं सुतं भीतम् विज्ञा अर्भक वत्सला विज्ञायार्भक वत्सला येष किल तं बद्धुम् दाम्ना तद्वीर्यकोविदा त्यक्त्वा यस्तिं सुतं भीतम् विज्ञायार्भकवत्सला येष किल तं बद्धुम् दाम्ना तद्वीर्यकोविदा माताजी शब्दार्थी स्वीकार त्यक्त्वा देखते हुए यष्टिम अपने हाथ की छड़ी को
अपने हाथ की छड़ी।
सुतम पुत्र को, भीतम अपने पुत्र के भय पर विचार करते हुए,
अपने पुत्र के भय पर विचार करते हुए।
अर्भकवत्सला कृष्ण की स्नेहमयी माता ने,
कृष्ण की स्नेहमयी माता
यश इच्छा की, किल निश्चय ही तम उसको बद्धुम बांधने के लिए, दामना रस्सी से अततत वीर्य को विधा, अत्यंत शक्तिमान भगवान को जाने बिना, कृष्ण के तीव्र प्रेम के कारण। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। यह जाने बिना कि कृष्ण कौन है या वे कितने शक्तिमान हैं, माता यशोदा कृष्ण के तीव्र प्रेम में सदैव विहलन रहती थी। कृष्ण के लिए मातृ स्नेह के कारण उन्हें इतना तक जानने की परवाह नहीं रहती थी कि कृष्ण है कौन, अथवा जब उन्होंने देखा कि उनका पुत्र अत्यधिक डर गया है तो अपने हाथ से छड़ी फेंक कर उन्होंने उसे बांधना चाहा, जिससे और आगे शैतानी न कर सके। माता यशोदा कृष्ण को इसलिए नहीं बांधना चाहती थी कि वे उन्हें डांटे, अपितु इस भय से कि इतना चंचल होने से यह बालक डर कर कहीं घर ना छोड़ दे। तब यह दूसरा ही उत्पात होगा, अतः स्नेह से पूरित होने और कृष्ण को घर छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने उसे रस्सी से बांधना चाहा। माता यशोदा कृष्ण को बता देना चाहती थी कि यदि वह उसकी छड़ी देखने मात्र से इतना भयभीत है तो उसे दही तथा माखन के पात्र तोड़ने और उसमें रखी वस्तुओं को बंदरों में बांटने जैसे उर्धम नहीं करना चाहिए। माता यशोदा ने यह समझाने की परवाह ही नहीं की कि कृष्ण कौन है और उनकी शक्ति किस तरह सर्वत्र फैलती है। यह कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का उदाहरण है। होम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामयीं ददापि स्वरूपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साकृजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं साद्वदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभेष्टकृपासिन्धुभयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतम्, तो यहां पर वर्णन की इस प्रकार है, माता यशोदा उन्होंने त्यक्त्वा उन्होंने छोड़ दिया क्या छड़ी को। तो यहां पर यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार यशोदा मैया के मन की भावना है कि मैं भगवान श्री कृष्ण को अच्छी तरह शिक्षा देने की भावनाओं से उन्होंने भगवान कृष्ण को दंड देने के लिए विचार करने के लिए उन्होंने छड़ी उठाया था। तो ये माता यशोदा, यशोदा का अर्थ क्या है? यशोदा यानी कि यश, जो यश को प्रधान करते हैं। तो यशोदा माता चाहती, यशोदा माता ने इस लीला के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के यशो को बढ़ाने का प्रयास की और भगवान कृष्ण अपने भक्त का यश बढ़ाते हैं। इस तरह भक्त और भगवान के बीच में इस प्रकार का स्पर्धा चलता है। यशोदा दोनों आपस में एक दूसरे के यश को बढ़ाते हैं। तो यहां माता यशोदा के विषय में जैसे इसी लीलाओं के इन्होंने छड़ी उठाने का मुख्य कारण क्या था, तो इस लीला की शुरुआत इसी प्रकार है। किस प्रकार यशोदा माता सुबह प्रातः काल उठकर किस प्रकार सज ढज कर वो माखन मंथन रही थी, बहुत सुंदर ढंग से विस्तार रूप से वर्णन किया गया है माता यशोदा के पूरे पूरा उनका श्रृंगार का वर्णन किया गया है सुखदेव गोस्वामी के द्वारा। तो हमारे प्रिय नटनागर प्रभु बता रहे थे, वो बता रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी इतने विस्तार से क्यों बता रहे, तो इतने विस्तार से यशोदा मैया, इतने विरक्त शिरोमणि मैया के विषय में इतने विस्तार से इतने निकट से क्यों देख रहे हैं। तो उत्तर में बहुत अच्छा ये वर्णन बताए कि वास्तविकता इसी यशोदा मैया का वर्णन करते करते आगे जाकर भगवान श्री कृष्ण उनके गोद में आएंगे, ये वर्णन उन्हें सुनना था या देखना था, इसलिए उन्होंने यशोदा मैया के श्रृंगार के विषय में जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। तो उन्होंने इस प्रकार विस्तार से वर्णन किए। तो त्यक्त्वा यष्टिम उन्होंने इस छड़ी को नीचे रख दिए। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने मक्खन जो जिसमें जहां पर मंथन कर रहे थे उसी को उन्होंने ऐसे जोरदार ऐसे प्रहार किया कि जिस प्रहार से वो मक्खन पूरा सरसर करके भय गया। अब जब भय गया तो कृष्ण को ऐसे प्रतीत हुआ कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया या मैंने बहुत बड़ी शरारत की, तो हो सकता है कि माता यशोदा मुझे दंड दे। तो उससे भय से उन्होंने उस स्थान को छोड़ने का प्रयास किया, जैसे चोर इस प्रकार अपने स्थान को छोड़कर भागने का प्रयास करते हैं। तो चोर के शक्ति के विषय में बहुत अच्छा व्याख्या किए राधा कृष्ण प्रभु। वो कहते हैं कि चोर की शक्ति कितनी है, केवल किसी ने रात को खांस दिया तो चोर भाग जाता है, कि चोर की शक्ति इतनी है केवल खांसने तक। और वहां से कृष्ण अब इतने बड़े चोर थे जो चोरों का सरदार, उन्होंने सोचा यहां रहना ठीक नहीं है, तो उस स्थान से वो भागे। तो भागे कहां, दूसरे कमरे में। जब दूसरे कमरे में भाग रहे थे तो दही को लांगना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था उन्हें, बड़े प्रयास से वो दूसरे कमरे में भागे। तो राधा गोविंद महाराज वर्णन करते हैं कि वो जो भगवान श्री कृष्ण जब त्रिविक्रम जब वामन देव के रूप में जब आए, तो उन्होंने केवल अपने दो कदम में बलि महाराज से पूरा तीनों लोक नाप लिया। और पूछा तीसरा कदम कहाँ रखूं, यानी कि तीसरा कदम रखने को भी जगह नहीं था। अब यहाँ पर वही कृष्ण इतने कदम पर कदम बढ़ा रहे, फिर भी वो माखन के जो दही जो भा हुआ है उसको लांगना बड़ा प्रयास करना पड़ रहा उन्हें। और वैसे ही यहाँ चाणक्य, वैसे ही बिल्वा मंगल ठाकुर अपने पद में वर्णन करते, यत रोम रंग परिपूर्ति विधाव रक्षा वरहा जनिमयी जनिमयी बहु वरहा विश्व मूर्धे। तो बताते हैं कि जब भगवान ने वराह का जब अवतार धारण किए तो वो भगवान वराह के एक रोम छिद्र में पूरे संसार का समुन्दर का पानी भी अगर डाल दिया जाए तो भी कम पड़ेगा, केवल एक रोम छिद्र में। आगे क्या कहते, तो कहते हम नाथ नाथ अरविंद दृशम यशोदा पानीर पानी द्वितयंतम स्नपयस स्नपयम बहुवः। तो कहते वही भगवान श्री कृष्ण जब वृंदावन बाल गोपाल के रूप में जब आए, यशोदा मैया केवल एक बाल्टी पानी भर के सर पर डालती है तो नाना हो जाता है। तो ऐसे अद्भुत भगवान श्री कृष्ण जो अचिंत शक्ति है, वो स्वयं अपने लीलाओं से वो दिखा रहे कि किस प्रकार भगवान के जो गौण लीला भगवान को बड़ा मधुर लगता है। भगवान के लीलाओं में दो प्रकार विभाजन है, एक है मुख्य दूसरा है गौण। तो मुख्य लीला में क्या है कि भगवान के ऐश्वर्य के विषय में ज्यादा दिखाई पड़ता है, और जो दूसरा गौण लीला जो है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने उस ऐश्वर्य की भावनाओं को छुपा देते हैं। इसलिए इस बाल लीलाओं में, सभी लीलाओं में सर्व उत्तम लीला जो है वो है दामोदर लीला। ये दामोदर लीला इसलिए इतना मधुर है, इतना भक्तों को इतना प्रिय लगता है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने अपने ऐश्वर्य की भावना नहीं दिखाई, उन्होंने अपने एक इस प्रकार का उन्होंने रोल अदा किया कि मैं एक मासूम बालक हूं, और यशोदा मैया को भी तनिक लगा भी नहीं। और उनका मुख्य कारण ये क्यों था कि दामोदर लीला करने का मुख्य कारण ये था, क्योंकि इसके पहले भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने विराट रूप का दर्शन दिया, और जब ग्वाल बाल ने कहा कि कृष्ण ने माटी खाया है, तो यशोदा मैया ने कहा मुंह खोलो तो देखे तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। तो मैया देखकर चौंक गई। फिर उसके ये एक महीने पहले की बात है, अब इसी दीपावली के दो तीन दिन पहले की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अपने मुख में जब दूध पी रहे थे तो पुनः अपना मुख खोलकर पूरा विश्व ब्रह्मांड दिखाया। तो मैया चकित हो गए कि ये कौन है। तो वो जो भावनाओं को हटाने के लिए यहाँ पर बाल गोपाल कृष्ण उन्होंने इस दिव्य लीलाओं को संपन्न किया कि वो अपनी माता को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं भगवान हूं। अगर पता लग गया कि मैं भगवान हूं, अगर माता को अगर पता लग गया कि मैं भगवान हूं, तो रोज माता मेरा कमरे में बंद कर तो रोज आरती करेगी और छोड़ देगी, तो कमरा बंद करके रखेगी, बोले तो भगवान है। तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसे हो। तो भगवान चाहते हैं कि जब भक्त भी उनके साथ जब आदान प्रदान करेंगे तो इस प्रकार उनके साथ प्रेम भावना स्नेह पूर्वक करें। जब भगवान श्री कृष्ण को जब कंस ने जब छल कपट से बुलाया था तो अक्रूर लेकर गए थे, तब उस समय बड़े बड़े हिष्ट पुष्ट सुनेल व्यक्तियों के साथ युद्ध हुआ, और जिस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने बड़े आसानी से उनको वध कर दिए और उनको परास्त किए। तो ये दृश्य देवकी माता और वसुदेव देख रहे थे। तो ये दृश्य देखकर उनको ये अनुभूति हो गया, हो ना यही भगवान है, और ये भावना उनके हृदय में छप गई थी। और इस कारण से जब कृष्ण जब आए उनसे मिलने के लिए, तो यहां पर माता पिता दोनों एकदम ऐश्वर्य भाव से पूरी तरह आवृत थे और इस कारण से वो उस पुत्र का स्नेह नहीं प्रकट हो रहा था। तो कृष्ण ने देखा ये तो मुझे इस प्रकार का स्नेह नहीं चाहिए। तो कृष्ण वहां पर जोर से रोने लग गए कि माता आप इतने दिन के बाद मिल रहे हैं, और इतने जोर से रोए कि आंखों से आंसू जब देखा तो देवकी माता भूल गई कि अरे ये तो भगवान, ये तो मेरा पुत्र है, और पुनः उनको आलिंगन कर दिया। तो मैया को बड़ा मैया इस प्रकार जब पुत्र के प्रति जब इस प्रकार स्नेह करते तो कृष्ण को बड़ा आनंद महसूस होता है। और इसी तरह कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने उन्होंने इस भावनाओं को प्रकट करने के लिए उन्होंने अब यहां पर उखल के ऊपर चढ़कर मटकी फोड़कर बंदरों को खिला रहे। तो मुख्य एक कारण ये भी है कि मैया ने छड़ी उठाया, क्योंकि बंदरों को भगाने के लिए छड़ी की आवश्यकता पड़ती है। वृंदावन में आज भी बंदर इतने चतुर हैं कि आंखों से ऐनक कब उठा के लेके जाएंगे पता ही नहीं लगता। अगर जेब में अगर केला भी रखा रहेगा तो इतने सावधानी से उठाता है ऐसे लगता है पत्नी ने पति के जेब से केला उठाया, पता भी नहीं लगेगा। और वहां पर जो ब्रजवासी भी वो भी बड़े वो कहते अच्छा अच्छा किसी का अगर महंगा चश्मा होता है सोने का वगैरह तो 500 रुपया देने को भी तैयार रहता है कि वो लौटा दो वापस। बंदर भी बार्टर सिस्टम करता है। तो वो भी कैसे अब वहां के ब्रजवासी को कहते तो ब्रजवासी लोग भी कुछ लेते 50 रुपया, 50 रुपये में 10 रुपये का बिस्किट लेते, बिस्किट का पूरा दिखाते हैं, और बंदर बिस्किट का पूरा लेता है दूसरे हाथ से चश्मा दे देता है। 40 रुपया ब्रजवासी का कमाई और 10 रुपया बंदर का, जोरो जट का बिजनेस जोर में चल रहा है। और वैसे वहां पर दोनों पार्टनरशिप बिजनेस में है। तो वैसे वानर ये बड़े इन्हें भगाने के लिए तो लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो मैया ने देखा ये सब वानर लोग भी इधर आ गए तो इन्हें भगाने के लिए उन्होंने छड़ी भी उठा लिया। छड़ी भी उठाया तो कृष्ण आज भागे। अब जब भागे वहां से तो मैया पीछे भागी। अब जब भागते हुए अंततः गत्वा परम दृष्टम अत्यंत द्रुतत्व गोप्या, अंततः गत्वा उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पकड़ लिया। अब जब पकड़ लिया तो अब कृष्ण की क्या अवस्था है देखिए। तो ऐसा वर्णन है कि जब मैया जब भाग रही थी तो उसे उस समय उस उनके माथे से कुछ फूल गिर रहे थे। तो फूल गिर रहे थे कहां पर? मैया के चरणों पर। तो ये यहां पर आचार्यगण ये बताते हैं कि उनके चरणों पर इसलिए गिर रहे थे क्योंकि मैया जो कि एक स्त्री है, एक जीव है, जिन्होंने बड़े आसानी से कृष्ण को पकड़ लिया, जबकि कृष्ण को पकड़ने के लिए बड़े बड़े योगी पंतष्ट कोटि सतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनस्सो मुनि पुंगवान, बड़े बड़े योगी जन हजारों वर्ष तक तप करते तत्पर भी भगवान को प्राप्त करना असंभव जैसे है, वैसे भगवान को अधोक्षजे उस भगवान को बड़े आसानी से यशोदा मैया उसे पकड़ पा रही है। तो कैसे परम दृष्टम अत्यंत द्रुत गोपिया, यानी कि केवल भक्ति के आधार पर गोपियों के पदचिन्हों के पद पर चलने से ही कृष्ण हमारे जीवन में आ सकते हैं। अब कृष्ण को पकड़ने के लिए और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कालयवन। कालयवन ने भी अपने जीवन में एक समय की बात थी कि कृष्ण के पीछे भागे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इतने सारे सेनाओं को क्या लेकर आया, अकेले युद्ध करो, तो बोला कालयवन ने कहा ठीक है हम तुम्हारे साथ अकेले युद्ध करेंगे। कालयवन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, महादेव से बड़े सिद्धि प्राप्त किए हुए व्यक्ति थे, बड़े भक्त थे महादेव के, और ऐसे फुर्तीला व्यक्ति था और मैदान के बीच में उतारे। और कृष्ण और कालयवन दोनों अब कृष्ण ने कहा थोड़ा और चलते हैं, तो मैदान के बीच में आते हैं, तो चलते चलते जा रहे और कृष्ण भी चलते जा रहे और पीछे, तो बोला बस करो, बोला नहीं और मुझे पकड़ो। अब यहाँ पर कृष्ण को पकड़ने का प्रयास किए काल्यवन, भाग रहे कृष्ण केवल चल रहे। अब यहाँ काल्यवन इतना क्रोधित हो गया और कहने लगा कि रणचोर रणभूमि में बुलाकर रण चोरी करके भाग रहा है। और वैसे भगवान ने कहा मेरा तो बहुत सारे नाम है, माखन चोर, वस्त्र चोर, लेकिन रण चोर तो बड़ा मधुर लग रहा है। अब वो इतना भौंकला गया, भाग भाग कर पसीने छूट गए, लेकिन वो कृष्ण हाथ में नहीं आए। और जबकि यहाँ पर यशोदा मैया क्या प्रयास किए, कुछ नहीं। अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए, एक यशोदा मैया एक स्त्री है और यहाँ पर काल्यवन एक पुरुष के रोल अदा कर रहा है, वैसे पुरुष शरीर में है और महादेव से सिद्धि भी प्राप्त हुआ है, वैसे काल्यवन भाग रहे हैं तो भी कृष्ण नहीं प्राप्त हो गए, लेकिन यशोदा मैया ने बड़े आसानी से पकड़ लिया, तो कैसे संभव है। अब यशोदा मैया ने यह भी नहीं सोचा कि दीपावली के दिन कृष्ण को पकड़ना है तो मैं पहले से जॉगिंग प्रैक्टिस करूं, उन्होंने कभी ऐसा भी नहीं किया, कोई तप नहीं किए, बड़े आसानी से कृष्ण को पकड़ लिए। केवल उनका क्या था, भक्ति भावना। इसलिए यहाँ पर महा सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि यशोदा मैया क्यों पकड़ पाई, क्योंकि अनघ, अनघ यानी कि निष्पाप, तो निष्पाप होने के कारण यशोदा मैया ने बड़े आसानी से पकड़ लिया। और काल यवन कैसे थे, पूरे पाप से भरे हुए थे और इस कारण से काल यवन भाग रहे कृष्ण हाथ में आई नहीं रहे। तो ऐसे बताया गया है कि जब जीवन में जब पाप की गठरी बढ़ जाती है तो कृष्ण हाथ में आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जिसने अपने जीवन में पाप को कम कर दिया है वो थोड़ा और रफ्तार से भाग पाएगा। इसलिए सुबह सुबह उठकर अगर कोई ब्रह्ममृत अवस्था में जो जितने फूर्ति से अगर जप करता है वो उतने जल्दी कृष्ण को प्राप्त करता है, लेकिन जब जीवन में जब पाप के बोझ जब बढ़ते हैं तो माला भी हिलना मुश्किल हो जाता है, माला के मणि भी हिलना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे यहीं पर ही एक घटना घटी, हमारे गौर निताई का जो बाहर का जो कलर है उसी कलर करके उस समय बस में था, तो बस में बिठाना था तो एक ब्रह्मचारी को बुलाया और फिर और भी, तो मैंने बोला ये एक दो जन से नहीं होगा, ये बहुत लोगों से हाथ लगेगा। तो चंद्रशेखर प्रभु और हरिनाम प्रभु ने दोनों जन ने आसानी से रख दिया। तो मैंने कहा चंद्रशेखर प्रभु को, वाह चंद्रशेखर क्या बल है, तो बोला हाँ ये सब बल हो जाता है लेकिन सुबह सुबह जपमाला नहीं उठता है। तो वास्तविकता जो बल, अभी जपमाला का वजन कितना है, कुछ ग्राम के हिसाब से होगा, अब वो कुछ ग्राम का जपमाला वो उठा नहीं जाता है, लेकिन बड़े बड़े वस्तुएं भारी वजन भी उठ जाता है। तो वो जो शक्ति जो जप माला के लिए उठाना चाहिए वो कहाँ चली गई। तो लोग बड़े बड़े कसरत कर अपने बड़े बड़े वो शहद बना सकते हैं, लेकिन वास्तविक शहद, वास्तविक कसरत किसका होना चाहिए, वो है मन का। ये मन का कसरत सबसे उत्तम है और उसी को करना चाहिए। अब वैसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार काल यवन जो इतने पाप से भरे रहने के कारण वो यशोदा मैया को पकड़ नहीं पाए, कृष्ण को पकड़ नहीं पाए, और यशोदा मैया बड़े आसानी से उन्होंने कृष्ण को पकड़ लिया। तो वैसे यशोदा मैया जब उनके पीछे भागी तब उस समय उन्होंने उनको पकड़े तब इस उस उन्होंने क्या दृश्य देखा, सुतम भीतम, भीतम यानी कि अब वो घबरा गए भगवान श्री कृष्ण। वो भगवान श्री कृष्ण जिन्हें जिनके इशारे से पूरा संसार डरता है, मत भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपस्यति मत भयात, जिनके भय से पूरा संसार, मत भयात वाति वातोयम, जिनके भय से वायु वो उल्टा डुलता है, जिनके भय से सूर्य प्रकाश देता है और जिनके भय से कभी इंद्र वर्षा गिराता है तो कभी रोक भी देता है, कभी गोवर्धन की लीलाओं में, और वैसे जिनके भय से मृत्यु तक घबराता है, वैसे भगवान श्री कृष्ण अब यहां पर घबराए हुए हैं यशोदा मैया के सामने। तो वास्तविकता भगवान यहां पर अपने ऐश्वर्य भावनाओं को त्याग रहे हैं। तो भगवान अपने भक्त के साथ जब लीला करते हैं तो अपने उन ऐश्वर्य की भावनाओं को परित्याग कर देते हैं। उनके अंदर जो भक्त के प्रति जो भावना है उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए वो ऐसी ऐश्वर्य भावनाओं को परित्याग कर देते हैं। जैसे रामायण में जहां पर वर्णन आता है कि जब प्रभु रामचंद्र जी उनका राज्य अभिषेक हो रहा था तो राज्य अभिषेक होने के एक दिन पहले पूरे अयोध्या में सभी लोग धूमधाम से फेस्टिवल बना रहे थे, उत्सव बना रहे थे कि कल प्रभु रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक है, और सभी लोग अपने अपने घर पर पकवान बना रहे, और उसी समय प्रभु रामचंद्र जी को दशरथ महाराज ने पुकारा। अब प्रभु रामचंद्र जी दशरथ महाराज से मिलने के लिए जा रहे थे। अब दशरथ महाराज को यहाँ पर कैकेयी ने अपना उलट सुलट सुनाकर प्रभु रामचंद्र जी से रामचंद्र जी को वन भेजने के लिए उन्होंने वचन मांग लिया। अब दशरथ महाराज वही बात बताना था तो कैसे बताए, तो उनको जब अपने महल में बुलाए तब उस समय प्रभु रामचंद्र जी दशरथ महाराज के पास अग्रसर हो रहे थे, तो उन्होंने सभी महल के महल में जाने के पहले पूरे अयोध्या में सबके घर में टटोल रहे थे और सबके घर में पकवान बन रहा था, और बड़े प्रसन्न चित्त से दर्शन करके अंदर गए, और अंदर गए तो वहां पर दशरथ महाराज ने अपने हृदय में कठोर पत्थर रखकर उन्होंने कहा आपको वन जाना होगा। तो प्रभु रामचंद्र जी सुनकर वापस लौटे। अब जब वापस लौटे तो पुनः उन्होंने अपनी दृष्टिपात की सारे अयोध्या के उनके घर के अंदर, तो उन्होंने क्या देखा, सभी लोग खुशी मंगल से बना रहे और प्रभु रामचंद्र जी मन ही मन सोच रहे थे कि देखो इन लोगों को पता नहीं कि मैं कल वन में जाऊंगा, मगर इन लोग वही स्थिति में हैं। इन लोग सोच रहे कि मैं राजा बनूंगा लेकिन वास्तविकता मुझे वन प्राप्त हुआ है। और ऐसी अवस्था में जब प्रभु रामचंद्र जी ने जब अपनी दृष्टिपात की तो पुनः प्रभु रामचंद्र जी की दृष्टि समर दृष्टि थी, कोई भेद नहीं था, कोई उनके अंदर विकार नहीं आया था किसी भी प्रकार का। तो ये नहीं सोचे कि कैकेयी ने मेरे साथ बुरा किया, नहीं, उन्होंने पुनः उसी भावना से प्रसन्न चित्त से उन्होंने दर्शन किया। तो वैसे ही वो भगवान प्रभु रामचंद्र जी जिनको राज्य अभिषेक होने वाला है लेकिन उसको वन प्राप्त हुआ, जबकि कोई विकार भी नहीं आया उनके भावनाओं में, यहां तक कि उन्होंने कैकेयी को थैंक यू बोला क्योंकि अभी अभी मेरा विवाह हुआ है तो मैं अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाऊंगा राज्य के उत्तरदायित्व को स्वीकारने के कारण, मगर तुमने तो मुझे बड़ा अच्छा मौका दिया है कि मैं अपनी पत्नी के साथ खूब समय दे सकता हूं। तो वैसे प्रभु रामचंद्र जी जिन्हें जिनके सारे राज्य छीन भी लिए लेकिन किसी भी प्रकार का विकार नहीं देखता दिखाई देता, मगर वही भगवान यहां पर जब छड़ी देखे तो वो घबरा गए, वो घबरा कर वो डगमगाने लग गए और रोने लग गए। अब रोने का कारण दो था, वो एक कारण ये था कि मैया के हाथ में छड़ी देख के रोने लग गए, और दूसरा कारण क्या था उनके रोने का, और उनका दूसरा कारण यह था कि मैंने इतना प्रयास किया माखन खाने का मगर वो भी ठीक से खा नहीं पाया। तो ये दो कारण था उनके रोने का। मैया ने फिर विचार किया कि अब इसके सजा के दंड तो मैं दूंगी, और उन्होंने उनको लेकर उखल के साथ बांधने का विचार कर दिया, और मैया बड़े आसानी से कर पाई। तो वो यहाँ पर आचार्यगण ये भी कहते हैं उखल के साथ कृष्ण को बांधना, यानी कि हमारे मन के साथ हमें कृष्ण को बांधना है। जिस प्रकार यशोदा मैया बड़े आसानी से कृष्ण को बांध पाई उखल के साथ, वैसे ही हमें भी अपने हृदय के साथ कृष्ण को बांधना है। और वो कैसे, कहा गया है जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम को बड़े सावधानी से व्यक्ति अगर श्रवण करता है, शुश्रुभि तत्क्षणात् सद्यो हृदय अविरुध्यते, केवल श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक अगर कोई विनम्रता पूर्वक अगर श्रवण करता है तो वो कृष्ण को अपने हृदय से बांध सकता है। तो हमारा हृदय किस प्रकार है, उखल के समान है। उखल यानी कि खल है, ये हमारा हृदय किस प्रकार है, एक खल है। खल खल क्या होता है, खल यानी कि बहुत दुष्ट। इसे खल जो है, खल के विषय में पुराण में बहुत अच्छा वर्णन किया गया कि यह है खल क्या है। एक बार एक ऐसे ही खल राज था, ये खल राज गांव में रहता था, सभी लोग गांव वाले लोग परेशान थे इससे, इस खल राज से। तो ये क्या हुआ कि जब इनका वृद्ध अवस्था आया, जब इनकी मृत्यु का समय निकट आ रहा था, तो इन्होंने अपना गांव घर बार छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। तो सारे गांव वाले लोग खुश भी हो रहे थे कि अब ये जाने वाला है, तो ये उसको सहा नहीं गया। तो उन्होंने क्या किया, अब जंगल जाने के लिए जब मार्ग ढूंढा तो कोई रास्ते में मिल गया, कोई साधु मिल गया। उन्होंने कहा तुम कहाँ जा रहे हो? बोला जा रहा हूं मैं जंगल। तुम हो कौन? मैं खलराज हूं। खलराज? खलराज वो समझ नहीं पाया खलराज क्या है। तो उन्होंने कहा खलराज यानी कि मैं वो हूं जो दूसरे को दुख देकर बड़ा प्रसन्न होता हूं। बोला अच्छा, तो अब जंगल क्यों जा रहे? नहीं, अभी मेरी मृत्यु आने वाली है तो मैं अब जंगल जा रहा हूं, ताकि जंगल में शेर मुझे एक बार खा लेगा तो मुझे खाने से उसे मानव के रक्त का खून का स्वाद मिल जाएगा। वो जब एक बार मानव के खून को चख लेगा तो फिर गांव में सभी लोगों को परेशान करेगा, और मैं इस बात से बड़ा आनंद होऊंगा, मरने के बाद भी गांव वाले को परेशान करूंगा। यह एक खल। तो वैसा हमारा जो हृदय जो है उसी प्रकार खल के समान है, उस खल के साथ कृष्ण को बांधना है। और इसलिए यशोदा मैया ने यह विचार किया कि इसे मैं बांधूंगी किसके साथ, उखल के साथ, क्योंकि इस लीलाओं में केवल कृष्ण ने शरारत नहीं किया है, साथ में उखल ने भी किया है, क्योंकि उखल भी इस पिक्चर में आया हुआ है। तो दोनों को साथ में बांधूंगी। तो अब वो किस प्रकार बांधेगी इसके विषय में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रभु एनी कमेंट? चरण गोपी प्रभु, थैंक यू।
जय।